ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ये इसका मंगलाचरण यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे यमत ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಗುಣ ಸ್ಥಾನೋ ಕಾ ವಿವರಣ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಯಹ ವಿಷಯ ಲಗಭಗ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ಗಯಾ ಪ್ರಥಮ ಚಾರ್ಟ್ ತ್ರಿಯಂಶ ಜೀವೋಂ ಕೆ ಭೇದ ಇಸ್ಕೋ ದೇಖೇಂಗೆ विग्रह गति में भावेंद्रियों की सूक्ष्म दशा रहती है, द्रव्येंद्रियां नहीं होती। इंद्रियों में भी और मन में भी दो प्रकार, द्रव्यमन भावमन, द्रव्येंद्री भावेंद्री। तो क्षयोक्षम दशा होने से वहां पर भावेंद्री उत्पन्न होने की शक्ति है। द्रव्येंद्री के बिना भावेंद्री कार्य नहीं कर सकती, द्रव्य मन के बिना भावेंद्री भाव मन कार्य नहीं कर सकता। इसलिए विग्रह गति में द्रव्येंद्रियां नहीं होती और द्रव्य मन नहीं होता, इतना कहना चाहिए। त्रियंश जीवों के भेद चार्ट है, त्रियंश जीवों के भेदों का। त्रियंश जीवों में मुख्य रूप से दो भेद किए हैं, बहुत छोटे अक्षर हैं। के मुख्य भेद स्थावर और त्रस्त। स्थावर जीव सर्वत्र तीन लोक में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। एकेंद्री जीव स्थावर यानी एकेंद्री जीव। दूसरा भेद है त्रस। त्रस जीव केवल लोक में त्रस नाली में रहने वाले जीव कहलाते हैं। त्रस नाली कहाँ है? तीन लोक है ना, उसका बीच का सेंटर, एक राजू प्रमाण का, वो त्रस नाली कहलाती है, उसमें रहते हैं। कौन बंदे सुबह शाम आते? स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। एकेंद्री जीवों में स्थावर जीवों में कितने भेद हैं? पांच। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये जीवों के भेद हैं। पृथ्वी में भी तीन प्रकार के, हाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर यानी मोटे शरीर वाले और सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटे शरीर वाले। उसमें भी तीन तीन प्रकार के भेद हो जाते हैं। बादर भी तीन प्रकार के हैं, पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। पर्याप्तक का मतलब पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आकर जो जीव जन्म ले रहा है वो पर्याप्तक जीव। और निवृत्ति अपर्याप्तक ने वह जो आया है कौन से नाम कर्म के उदय से? पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। पर्याप्ति तो पूर्ण रूप से नियम से पूर्ण करेगा, पर्याप्तियों को नियम से पूर्ण करेगा, किंतु जब तक नहीं करेगा तब तक निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। पर्याप्तियों को जितनी भी पर्याप्तियां होती हैं उन अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण तो नियम से करेगा ही, किंतु जब तक नहीं पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक के लिए उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्तियां कितनी हैं? छह हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। इनमें से आदि के दो पर्याप्तियां कौन कौन सी? आहार और शरीर, ये दो पर्याप्ति। इन दो पर्याप्तियों को जब तक पूर्ण नहीं करता तब तक वह निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। शेष पर्याप्तियों को पूर्ण करे या न करे वो पर्याप्तक ही कहलाएगा। शेष पर्याप्तियों को पूर्ण करे तो भी पर्याप्तक, नहीं भी करे तो भी पर्याप्तक। लेकिन कम से कम कितनी पर्याप्तियों को पूर्ण करना पड़ेगा? दो, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। आदि के दो पर्याप्तियों को जब तक पूर्ण नहीं करता है तब उसको निवृत्ति अपर्याप्तक ऐसा नाम होता है उस जीव का, निवृत्ति अपर्याप्तक। निवृत्ति यानी निवृत्त होता है, होगा ही नियम से, पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा ही, किंतु अभी तक किया नहीं, ऐसी दशा को निवृत्ति अपर्याप्तक दशा कहते हैं। निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में रहने वाला जीव किस नाम कर्म का उदय वाला होता है? पर्याप्त नाम कर्म वाला होता है। शेष पर्याप्तियां कौन कौन सी? श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। इन तीन पर्याप्तियों को इंद्री श्वासोश्वास भाषा और मन, चार पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं भी किया है तो भी उसको पर्याप्तक ही कहते हैं। दो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है तो निरुक्तय पर्याप्तक, आदि के दो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है तो निरुक्तय पर्याप्तक, और उनको पूर्ण कर देता है तो उसको पर्याप्तक कहेंगे, और शेष पर्याप्तियां चार उनको पूर्ण नहीं भी किया है तो भी पर्याप्तक ही कहेंगे, और करता भी है तो भी पर्याप्तक ही कहेंगे। तो ऐसे पर्याप्तक जीव के ही ये दोनों भेद हैं, अवस्थाएं हैं। पर्याप्तक जीव पहले पर्याप्तियों को पूर्ण कर देता है तो पर्याप्तक, जब तक नहीं करता है तब तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक। अब तीसरा भेद कौन सा है? लब्धि अपर्याप्तक। पृथ्वी कायिक में बादर में अपन भेद कर रहे हैं, बादर पर्याप्तक जीव, बादर निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव और बादर लब्धि अपर्याप्तक जीव, ये सेपरेट जीव है। वैसे दो ही भेद हैं ये, पर्याप्तक जीव का और अपर्याप्तक जीव का, दो ही भेद हैं। पर निर्वृत्ति अपर्याप्तक जो है वो बीच की दशा है, अवस्था है। लब्धि अपर्याप्तक जीव यानी श्वास के 18वें भाग में जिसका नियम से मरण होता है वह जीव, श्वासोश्वास के 18वें भाग में नियम से मरण जिसका हो जाए वो लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाता है। क्या होता है श्वास? तो श्वास एक नाड़ी, नाड़ी है ना आपके, नाड़ी एक बार नाड़ी का फड़कन, एक बार फड़क दिया, दूसरी बार फड़कने में जितना समय लगा बीच का समय, ये श्वासोश्वास कहलाता है। इसमें 18 भाग करो, इसको श्वासोश्वास बोलते हैं, श्वास उच्छ्वास, इसको ही श्वास उच्छ्वास कहा है। 18 भाग करो, उसमें से एक भाग में ही मरता है वो, यानी इतनी छोटी आयु को बांध लेता है और मरण करता है। जन्मा मरा, जन्म किया मरण किया, जन्म किया मरण किया, ऐसा। और यह जीव जन्म मरण करता हुआ रहता है तो ऐसा इतनी छोटी आयु को लेकर के जन्म लेता है तो कौन से नाम कर्म के उदय से? अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। और पहला वाला जो जीव था वो कौन से नाम कर्म वाला था? पर्याप्तक। ये कौन सा है? अपर्याप्तक। अपर्याप्तक नाम कर्म वाला जो जीव होता है नियम से छोटी उम्र को, छोटी आयु को बांध करके जन्म लेता है और जन्म लेने से पहले ही मरण करता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, ये जो 6 पर्याप्तियां हैं इनमें से एक को भी पूर्ण नहीं करता। गया, आहार ग्रहण कर रहा था और आयु समाप्त हो गई, ऐसा। आयु समाप्त हो गई, मरण किया, फिर कहाँ गया? वह कितनी गतियों में जा सकता है? 2 गति में जा सकता है। कहाँ नहीं जाएगा? नरक नहीं जा सकता और देवगति में नहीं जा सकता, क्योंकि वह जहाँ जाता है वहाँ पर नरक जाने योग्य पाप और देवगति में जाने योग्य पुण्य संग्रह नहीं कर पाता। इसलिए देवगति और नरक गति को छोड़कर 2 गति में जाता है। मनुष्य गति में जाने के लिए कोई पुण्य नहीं करना पड़ता, बहुत बड़े पुण्य के उदय से मनुष्य भोग मिलता है कहते हैं ना। लब्धि अपर्याप्तक जीव भी सीधा मनुष्य बन सकता है, तो वहां पर कौन सा पुण्य किया? तो फिर मनुष्यायु का बंध किस कारण से होता है? जीवों को मनुष्यायु, मनुष्य गति किस कारण से मिलती है? तो कहते हैं मंद कषाय के कारण से मनुष्य आयु का बंध कर मनुष्य गति में आ सकता है। मंद कषायी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है ना, इन कषायों को मंद करने से मनुष्यायु का बंध होता है। कितना सरल है मनुष्य बनना, पुण्य कमाओ या नहीं कमाओ, लेकिन कषायों को मंद रखोगे तो मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य बनने के लिए कषाय कंट्रोल में रहना चाहिए। देव बनना चाहते हैं तो कषाय भी मंद चाहिए और कुछ करना भी पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। इसलिए देवगति में पंचेंद्रिय जीव ही जन्म लेते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। सौध्नी पंचेंद्रिय यानी क्या? मन सहित जीव। असौध्नी पंचेंद्रिय यानी मन रहित। ये दोनों जीव देवगति और नरक गति में जा सकते हैं। मन रहित जीव भी देवगति में जा सकता है, क्योंकि पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। पाप नरक जाने लायक भी हो सकता है पांच इंद्रियों से। आंखों से देखकर राग द्वेष होता है, कानों से सुनकर राग द्वेष होता है, नासिका से गंध सुनकर राग द्वेष होता है, रसनेन्द्रिय से रस को चखकर राग द्वेष होता है। तो विषयों को ग्रहण करते समय राग द्वेष जो होता है पंचेंद्रिय में, वह तीव्र होता है, एक इंद्रिय में तीव्र नहीं होता। और एक इंद्रिय में एक इंद्रिय संबंधी राग द्वेष होता है, पंचेंद्रिय में पांच इंद्रिय संबंधी राग द्वेष होता है। असंगी पंचेंद्रिय में असंगी, और संगी पंचेंद्रिय में पांच इंद्रिय और मन सहित राग द्वेष होता है। अब ये समझना है इन दोनों को। सौध्नी पंचेंद्रिय देवगति में जाएगा तो कहां तक जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है सौध्नी पंचेंद्रिय। मनुष्य, मनुष्य गति का मनुष्य ही जा सकता है। देवगति का देव मरण कर देवगति में जन्म लेता है क्या? नहीं लेता। मनुष्य सौध्नी पंचेंद्रिय हो तो वह सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। तो फिर क्या हम भी जा सकते हैं पंचम काल में? नहीं, पंचम काल के मनुष्य अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भेदभाव? चतुर्थ काल वालों को तो सर्वार्थ सिद्धि और पंचम काल वालों को 16वां स्वर्ग, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सवनन नहीं है। सवनन के अनुसार ही स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं, उसके आधार से ही पाप पुण्य का संग्रह होता है। तो हमारा पुण्य अधिक से अधिक संग्रहित हो जाए तो कहां तक जा सकते हम? 16वें स्वर्ग तक के पुण्य को ही अर्जन करके 16वें स्वर्ग में जन्म ले सकते। इतनी ही कैपेसिटी अपने शरीर में है अपने पास। यदि चौथा सहनन हो, पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो, तीन तो है ही नहीं पंचम काल में। सोनन कितने हैं टोटल? छह हैं। छह में से पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो, पंचम काल में तीन सहनन मिल सकते। और सबको कौन सा मिलता है ये कोई गारंटी हम ले नहीं सकते। हम अपने सहनन को कौन सा है ये भी पता नहीं लगा सकते, अनुमान से ही कह सकते। किंतु अपने सहनन को अपन पता नहीं लगा सकते, कोई माध्यम नहीं है। यदि मान लो अपने को चौथा नंबर का सहनन मिला, पहले के तीन तो मिलते नहीं, चौथे नंबर का मिल गया, और इससे जो कुछ भी हम पुण्यार्जन करेंगे उससे अधिक से अधिक कौन सा स्वर्ग जाएंगे? 16। और यदि अपने को पांचवा सहनन मिला है तो फिर अधिक से अधिक कहां जाएंगे? 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। और यदि छठा सहनन मिल गया है तो हम अधिक से अधिक कहां तक जाएंगे? आठवें स्वर्ग तक जाएंगे। आठवें स्वर्ग से ज्यादा जा नहीं सकते, आठवें स्वर्ग तक ही जाने का पुण्यार्जन कर सकते हैं, उतना ही कैपेसिटी होती है। सौनन की परिभाषा। सौनन क्या कहलाता है? सौनन का मतलब मनुष्य के और त्रिरेंचों के, पंचेंद्री त्रिरेंच, द्विंद्री से लेकर देखो, द्विंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री जीवों को शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डी होती कि नहीं होती? होती है। और एक इंद्री जीवों को हड्डियां नहीं होती। तो सौनन जो होता है एक इंद्री जीवों को नहीं होता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन जीवों को सौनन नहीं होता, सौनन एक भी नहीं रहता, शरीर रहता है लेकिन सौनन नहीं रहता। द्विंद्री से लेकर के सौनन होता है। तो द्विंद्री जीवों को कौन सा सौनन होता है? द्विंद्री यानी अली वगैरह, अली, शंख, शंख के जीव, अली, ये कौन से इंद्री? द्विंद्री, मुंगी आदि, ये तीन इंद्री, मक्खी, मच्छर आदि चार इंद्रियां, और पक्षी आदि पांच इंद्रियां, चिपकली आदि ये भी पंचेंद्री परंतु असौध्नि पंचेंद्री, चिपकली असौध्नि पंचेंद्री। और एक घोरपड़ होता है मालूम, घोरपड़ आदि सौध्नि असौध्नि भी होते, सांप सौध्नि असौध्नि हो सकते, और पक्षी सौध्नि असौध्नि हो सकते हैं। सौध्नि हो तो मन सहित और असौध्नि हो तो मन रहित, इनको सौनन होता है। तो द्विंद्री जीवों को कौन सा सौनन होता है? छट्टा। छट्टा छोड़कर बाकी सौनन द्विंद्री जीवों को नहीं होते। अच्छा, तीन इंद्री जीव मुंगी आदि को कौन सा सौनन? छट्टा, उससे भिन्न सौनन नहीं होता। मच्छर आदि को? छट्टा। असौध्नि पंचेंद्री जीव को, चिपकली आदि को? छट्टा सौनन, एक ही सौनन होता है। अब सौध्नि पंचेंद्री जीव को छह सौनन होते, पहला भी रह सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी रह सकते हैं, परंतु एक जीव को एक ही सौनन होगा, डबल डबल नहीं होते। एक जीव को एक ही सौनन, वज्रषभ नारायण सौनन पहला नंबर का सौनन, ये पहला नंबर का सौनन जिसको हो दूसरे नंबर का नहीं रहेगा, अन्य कोई भी नहीं रहेंगे, एक ही सौनन होता है। सौनन का मतलब होता है हड्डियों की विशेषता, हड्डी जहाँ जुड़ती हैं, हड्डियों की कील वगैरह जो रहते हैं वो उनकी मजबूती की विशेषता। कोई ऐसा टच रहता है, कोई ऐसा सांकल जैसा फंसा हुआ रहता है, कोई केवल टच ही रहता है ऐसा, तो किसी का हाथ खींच लिया तो यहाँ का उखड़ के आता है और किसी का उखड़ के नहीं आता। और हड्डी में भी विशेषता पाई जाती है कि वो हड्डी मजबूत भी होती है, ऊपर ऊपर पहले नंबर के सौनन वाले की हड्डी बहुत मजबूत होती है, आसानी से टूटती नहीं। वज्रषभ नारायण सौनन को प्राप्त करके कोई जीव जन्म लिया, मनुष्य बन गया, और वह छोटी अवस्था में एक साल का बालक भी है और वह दूसरे मंजिल से नीचे गिर गया और पत्थर पर गिर गया, उसकी हड्डियां नहीं टूटेंगी, पत्थर चूर चूर हो जाएगा, पत्थर चूर चूर हो जाएगा लेकिन हड्डी नहीं टूट सकती। शास्त्रों में उदाहरण आता है हनुमान जी का, हनुमान जी को कोई एक विद्याधर अपने विमान में बिठा करके आकाश मार्ग से जा रहा था और वह बालक खेल रहा था विमान में, खेलते खेलते किनारे पर गया और पैर फिसल करके नीचे गिर पड़ा। तो विमान जा रहा था पर्वत के ऊपर से, पर्वत के नीचे एक बड़ा चट्टान था, उस चट्टान पर जाकर के गिर गया, और इतना बड़ा चट्टान था कि उसको चोट लगी, इनको चोट नहीं आई, पत्थर को ही चोट आई, पत्थर दो खंडों में विभाजित हो गया और वह अपना बैलेंस छूट गया उसका, और वह ऐसा लुढ़क गया कि बालक उसके नीचे हो गया और पत्थर ऊपर गिर पड़ा। विद्याधर का विमान आगे बढ़ा, आगे जाकर के देखता है कि पीछे बालक है क्या नहीं, बालक नहीं था। तो उन्होंने कहा कहाँ गया, कहाँ गिर गया, ढूंढता ढूंढता हुआ वापस आया। जब वह एक पत्थर को देखा कि वो पत्थर हिल रहा था, वह श्वासोश्वास ले रहा था तो पत्थर हिल रहा था। उन्होंने कहा ये पत्थर क्यों हिल रहा है, नीचे उतर के देखा और उसको थोड़ा सा किनारा कर दिया, झांक करके देखा तो बालक नीचे गिर पड़ा है। उन्होंने उठा लिया, अच्छी तरह से देखा, बालक को कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने पुनः विमान में बिठा लिया और ले चले गए। वज्रऋषभ नाराज सोनन ऐसा होता है, ऐसा आपका सोनन है क्या? तो मोक्ष नहीं जाओगे। मोक्ष जाने के लिए इतना मतलब मजबूत सोनन चाहिए पड़ता है, जिसकी हड्डियां पत्थरों को तोड़ नहीं सकती, कर्मों को क्या तोड़ेंगे वो। कर्म तो पाषाण से भी मजबूत होती। बैठने के लिए शक्ति चाहिए। एक घंटे तक अपन प्रवचन सभा में भी बैठे हैं तो चार बार ऐसे ऐसे करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो अपना सोनन नहीं है। इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है। लोग कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो दीक्षा लेने से क्या फायदा, क्यों लेना चाहिए? तो मोक्ष मिलता हो तो ही लेना चाहिए क्या? नहीं, कर्मों की निर्जरा करने के लिए दीक्षा लेनी होती है। अपने पास अनादिकालीन कर्म कमाए हुए कितने हैं, ढेर सारे हैं, अनंतानंत कर्म पुद्गल परमाणु अपने आत्मा में रह रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं। उनकी निर्जरा के बिना कर्म से मुक्त आत्मा हो नहीं सकता। कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए दीक्षा ली जाती है। पंचम काल में दीक्षा लेने से क्या प्रयोजन, कर्मों से छुटकारा पाना है। तो कुछ कर्म तो टूट जाएंगे ना, कुछ कर्म तो अलग हो जाएंगे। इसलिए सहननों का समझ में आया। हाँ,
आत्मा तो जन्म से ही शुद्ध रहता है।
जन्म से कब रहता है शुद्ध?
रहता है, इसलिए तो मुक्त कहता है।
किसका शुद्ध है उनको बुला ले। जन्म से आत्मा शुद्ध हो ये कैसे संभव?
मोक्ष कैसा जाता है,
है?
मोक्ष क्यों जाता है?
शुद्ध हो तो मोक्ष जाने की जरूरत क्या है जन्म से?
फिर हम स्वयं आत्मा
अशुद्ध रहता है ये कहो।
फिर आपका और हमारा स्वयं आत्मा तो सिद्धालय में है, ऐसा समझने में क्या हो गया?
हाँ, शुद्ध हो तो शुद्धालय में है। शुद्ध हो तो यही शुद्धालय है क्या? शुद्ध हो तो यही शुद्धालय शुद्ध है क्या? तो शुद्ध परमेष्ठी भी यही शुद्ध बने थे, शुद्ध हुए थे, यहीं से शुद्धालय शुरू होता है। रहने का स्थान वो है, हमेशा रहते हैं इसलिए वो शुद्धालय, या शुद्धों का प्रारंभिक निवास स्थान तो यही है। शुद्ध कहाँ हुए? वो इसी धरती पर हुए, जहाँ तप किया, आठ कर्मों को नष्ट किया, वहीं शुद्ध हो गए। जन्म से तो वो भी अशुद्ध थे। जन्मते वक्त कोई भी शुद्ध नहीं होता, कर्म सहित होता है। कर्मों को शरीर को नष्ट करने पर ही शुद्ध होता है। सौनन, सौनन का जरा ध्यान में रखना है। देखो, पहले सहनन वाला मनुष्य कहां तक जा सकता है? स्वर्गों में, स्वर्गों में कहां तक जा सकता है ध्यान में रखना है। कहां तक जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि तक जाएगा। दूसरा सहनन वाला मनुष्य कहां तक जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि तक नहीं जाएगा। नौ अनुदिश तक जा सकता है, नौ अनुदिश तक। उसके नीचे पंच अनुत्तर के नीचे नौ अनुदिश है ना, तो नौ अनुदिश विमानों में जन्म ले सकता है। तीसरा सवर्ण वाला कहां तक जा सकता है? तीसरे नंबर वाला नौ ग्रहिक तक जा सकता है। देखो ये याद में है ना, सोलह स्वर्ग के उपरांत क्या है? नौ ग्रहिक, उसके उपरांत क्या है? नौ अनुदिश, उसके उपरांत क्या है? पांच अनुत्तर विमान, पांच हैं वो विमान, उसमें से एक सर्वार सिद्धि विमान है, चार को छोड़ो उसमें से एक, उसका नाम है सर्वार सिद्धि। लेकिन अनुत्तर विमान कितने हैं? पांच। सर्वार सिद्धि विमान के आसपास में चार हैं, चार विमान, चारों दिशा में चार और बीच में एक, ऐसे विमान है वो। तो सर्वार सिद्धि में जो है 33 सागर की आयु होती है देवों की, वहां जाने के लिए प्रथम सवनन ही चाहिए। पंच अनुत्तर विमान में जाने के लिए भी, चार जो शेष विमान है ना, वहां जाने के लिए भी प्रथम सवनन ही चाहिए पहले नंबर का। अब अनुदिश में जाने के लिए कौन सा चलेगा? दूसरा सवनन से अनुदिश तक जा सकते हैं, पांच अनुत्तरों में नहीं जा सकते। तीसरे सवनन से कहां तक जा सकते हैं? नौ ग्रहिक तक जा सकते। चौथे सवनन से कहां तक जा सकते हैं? सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते। पांचवें सवनन से कहां तक जा सकते हैं? बारहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और छठे सवनन से कहां तक जा सकते हैं? आठवें स्वर्ग तक जा सकते। इसको ध्यान में रखना है, ये बार बार चर्चा आएगी आगे जाकर। चलिए अब स्वर्ग की बात हो गई, सवनन के अनुसार अब हम नरक की बात करेंगे। पहले प्रथम सवनन वाला मनुष्य नरकों में, सातों नरकों में जा सकता है, सातवें नरक तक जा सकता है। दूसरा सवनन वाला छठे नरक तक जा सकता है। तीसरा सवनन वाला छठे नरक तक जा सकता है। चौथा सवनन वाला छठे नरक तक जा सकता है। देखो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीन सवनन वाले मनुष्य छठे नरक तक जा सकते हैं, छठे नरक तक जा सकते हैं, छठे नरक तक। अब पांचवा सवनन वाला पांचवें नरक तक जा सकता है। पांचवा सवनन वाला मनुष्य पांचवें नरक तक जा सकता है। छठा सवनन वाला तीसरे नरक तक जा सकता है। ध्यान में रखेंगे, पहला सवनन वाला सातवें तक और दूसरा, तीसरा, चौथा सवनन वाला छठे तक, पांचवा सवनन वाला पांचवें तक जा सकता है और छठे सवनन वाला तीसरे नरक तक जा सकता है। यह केवली भगवान की वाणी है, केवल ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, कि हम नहीं कह रहे कहां तक जा सकता है, हमने देखा है क्या, हम नहीं कह रहे हैं, केवल ज्ञानियों ने जो जाता हुआ देखा है अपने केवल ज्ञान में, कौन सा सनन का धारी मनुष्य कहां तक जाता है ये किसमें दिखेगा? केवल ज्ञान में ही दिखेगा, हम लोगों को दिखेगा नहीं। केवल ज्ञानियों ने जो कुछ कहा है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये केवलियों की वाणी है, भगवान महावीर ने ऐसा उपदेश दिया है। तो नरक की बात हो गई, अब चलते सौधनी पंचेंद्री जीव, स्वर्ग और नरक, जीव ने मनुष्य, सौधनी पंचेंद्री मनुष्य, मनुष्य की अपेक्षा से ये चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं असौधनी पंचेंद्री जीव स्वर्ग और नरक में कहां तक जा सकते हैं। असौधनी पंचेंद्री किस जीव गति में रहते हैं? मनुष्य मनुष्य गति में तो नहीं रहते है ना। हाँ, त्रिरेंच गति में असौध्नि पंचेंद्री जीव रहते हैं। असौध्नि पंचेंद्री जीव देव गति में जाएगा तो कहां तक जाएगा? स्वर्गों में तो जा नहीं सकता, परंतु देव गति में अवश्य जाता है। जाएगा भी तो भवनत्रिक में जा सकता है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी बन सकता है। स्वर्गों में एक भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, एक भी स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। कौन? असौध्नि पंचेंद्री त्रिरिंच, जैसे चिपकली आदि है। चिपकली मरकर व्यंतरदेव बन सकती है, भूत बन सकती, पिशाच बन सकती, भवनवासी बन सकती, व्यंतरवासी बन सकती, ज्योतिषवासी बन सकती, किंतु स्वर्ग में नहीं जा सकता चिपकली। और मक्खी, मक्खी किस स्वर्ग तक जाती है? मक्खी देव गति में ही नहीं जाती। नस व्यंतर आदि बनती है मक्खी, मच्छर आदि, चौरेंद्री है ना, एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीवों को तो दो ही गतियां हैं, त्रिरंच और मनुष्य। पंचेंद्री जीवों को चारों गतियां हैं, पंचेंद्री त्रिरंचों को और पंचेंद्री मनुष्यों को चारों गतियां हैं। मक्खी, मच्छर मरण करके मृत्यु के पश्चात मनुष्य बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। मक्खी, मच्छर आदि बनकर पुनः मक्खी, मच्छर के पर्याय में ही जन्म ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। मक्खी, मच्छर आदि मरण कर एकेंद्री बन सकते हैं क्या? नहीं। पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में बन सकते, बन सकते। और क्या क्या बन सकती? सब जगह जा सकती, दो गति में तो सब जगह। मनुष्य दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के? दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य और पर्याप्तक मनुष्य, गर्भज मनुष्य, गर्भज मनुष्य और सम्मूर्छन मनुष्य। यूं कह सकते हैं पर्याप्तक मनुष्य और अपर्याप्तक मनुष्य। हम सब कौन से हैं? हम पर्याप्तक मनुष्य हैं। हमारा जन्म कौन सा जन्म है? हम गर्भज हैं, गर्भ जन्म हुआ है, गर्भ जन्म हुआ है। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? गर्भ जन्म में कितने प्रकार हैं? तीन। कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोत। पोत, हम इन तीन में से कौन से हैं?
जरायुज।
हाँ, गर्भज के ही तीन भेद हो गए, गर्भज के ही तीन भेद हो गए, जरायुज, अंडज और पोत। इन तीन में से हम कौन हैं? हम जरायुज हैं। और भैंस, गाय, घोड़े आदि जरायुज, जरायुज, क्योंकि उसके ऊपर भी जरा यानि एक कवच होता है, जन्म के काल में आवरण होता है, उस आवरण को हटाने पर जीव बाहर आता है, इसको जरायुज बोलते हैं। अंडज, जो अंडे से बाहर आते हैं, पहले तो गर्भ से बाहर आते हैं इसलिए गर्भज हैं, अब कवच के रूप में क्या है? अंडा है, तो अंडे को फोड़कर जीव बाहर आता है इसलिए अंडज कहते हैं। अंडज ये किस जन्म का भेद है? गर्भ जन्म का भेद है। जरायुज किस जन्म का भेद है? गर्भ जन्म का भेद है। पोत, पोत यानी क्या समझना चाहिए? पोत जन्म, कवच के बिना जन्म लेते हैं, सीधा गर्भ से बाहर आते हैं, कवच नहीं रहता और चलना फिरना शुरू, इसको पोत जन्म बोलते हैं। जरायुज, अंडज और पोतजीत गर्भ जन्म के तीन भेद हो गए। ये पंचेंद्री कहलाते हैं। इनमें असौदनी भी होते हैं और सौदनी भी होते हैं गर्भ जन्म के जीव सौदनी भी होते हैं, असौदनी भी होते हैं। असौदनी जीव चारों गति में जा सकते हैं, सौदनी जीव भी चारों गति में जा सकते हैं, किंतु एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जो जीव हैं वे दो ही गति में जाते हैं, त्रिरिंच और मनुष्य दो ही गति में जाते हैं। असौदनी पंचेंद्री जीव की बात चल रही थी। असौदनी पंचेंद्री जीव यदि देवायु को बंद करेगा तो देवगति में कहां जाकर जन्म ले सकता है? भवनत्रिक में जन्म ले सकता है। यदि नरकायु का बंद करेगा तो किस नरक तक जा सकता है? तो कहना चाहिए पहले नरक तक ही जा सकता है, पहले नरक से आगे उसका जन्म नहीं होता। और सौदनी पंचेंद्रिय होता तो कहां तक जा सकता है? सातवें नरक तक जा सकता है सौदनी पंचेंद्रिय। अच्छा, मनुष्य की बात चल गई, अब हम त्रिरिंच की बात करते हैं। त्रिरिंच में दो भेद थे, सौदनी असौदनी, नरक और स्वर्ग। ये दोनों बात हो गई असौदनी के लिए। सौदनी के लिए हम बात करेंगे अब। सौदनी पंचेंद्री जीव जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, ये सभी सौदनी पंचेंद्री हैं। मछली, सांप, मेंढक, ये भी सौदनी पंचेंद्री हैं। कुछ इसमें सौदनी असौदनी भी होते हैं, लेकिन गाय भैंस आदि नियम से सौदनी ही होते हैं। तो ऐसे जीवों की बात चल रही है, ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं किसके चल रहे और क्या उत्तर दे रहे हैं। एक मेंढक है, सौदनी पंचेंद्री है, मान लो वह अधिक से अधिक स्वर्गों में जा सके तो कहां तक जा सकता है मेंढक? सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है। मेंढक सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है, परंतु सोलहवें स्वर्ग तक जाने वाले उस मेंढक को कौन सा सौनम चाहिए? चौथा चाहिए, कम से कम चौथा तो चाहिए। किंतु सौदनी पंचेंद्री है तो इसको कर्म भूमि में छह मिल सकते। पहला भी मिल सकता है, दूसरा भी मिल सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पंचम भी और छठा भी, कोई भी मिल सकता है। यदि उसी मेंढक को छठा सौनन मिल गया है तो कहां तक जा सकता है? आठवें स्वर्ग तक जा सकता है। पांचवा सौनन यदि प्राप्त हो उस मेंढक को तो बारहवें स्वर्ग तक जा सकता है। चौथा प्राप्त हो तो सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है। तीसरा हो तो नवग्रह तक जा सकता है। बता रहे हैं धीरे धीरे, नवग्रह तक जा, अरे चढ़ाओ उसको, जैसे जैसे सौनन बढ़ गया वैसे वैसे उसको भी चढ़ा दो ऊपर। त्रिरंच जीव कोई भी सौनन धारण करता हो, ध्यान रखना, अधिक से अधिक सोलहवें स्वर्ग तक ही जा सकता है। पहला सौनन हो तो भी सोलहवें स्वर्ग तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कोई भी सौनन हो, अधिक से अधिक हाईएस्ट सौनन, वज्रषभ नारा सौनन भी हो, तो भी वह 16वें स्वर्ग तक जा सकेगा। अच्छा, 16वें स्वर्ग तक जाने वाले तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं, तो कौन कौन से सवर्ण चल सकेंगे? एक, दो, तीन, चार। 16वें स्वर्ग तक चौथे सवर्ण से भी जाते हैं ना, तो चौथे सवर्ण से 16वें तक जाते हैं, तो क्या पहले से नहीं जाते, दूसरे से नहीं जाते, तीसरे से नहीं जाते? जाते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवर्ण वाले तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। गाय हो, भैंस हो, मेंढक हो, कुछ भी हो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा सवर्ण में से कोई सवर्ण हो तो हाईएस्ट वह स्वर्गों में जाएगा, तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। देखो कैसे सिद्धांत है, इसी को कहते हैं जीव सिद्धांत। कहां तक जा सकता है इसकी नियमावलियां हैं, ये प्रकृति नियम हैं, सृष्टि के ये नियम हैं कि वह वहां तक ही जाता है, उतनी ही कैपेसिटी है। इसलिए इस पुस्तक का नाम जीव सिद्धांत चर्चा। जीव के पीछे क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या रहस्य है, इसकी क्या क्या परिणतियां हैं, किस अवस्था में मरण करता है, किस अवस्था में कहां तक जन्म लेता है, स्थान आदि की विशेषता को बताता है। आगे इस संबंधी चर्चा है, चार्ट भी है उसकी, सहनन वाली चार्ट। यदि तिर्यंच, तिर्यंच में से अब हम लेते हैं मछली, मछली को वज्र वृषभ नाराज सवनन भी हो सकता है। जैसे स्वयंभू शास्त्र में बताया है, स्वयंभू रमन समुद्र एक है, वो कहाँ है? मध्य लोक में, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे राउंड राउंड है। पहला वाला द्वीप कैसा है? रोटी जैसा, रोटी जैसा है वो, जम्बू द्वीप। और उसके बाद एक समुद्र, इस द्वीप से वह डबल क्षेत्रफल वाला है, क्षेत्रफल डबल है, तो द्वीप से डबल समुद्र विस्तार में, और उस समुद्र से डबल फिर द्वीप, उस द्वीप से डबल फिर समुद्र, उस समुद्र से डबल एक द्वीप, ऐसे कितने हैं? असंख्यात हैं। ये कहां पर हैं? मध्य लोक में हैं। और इन सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पर्वत किस द्वीप में है? जम्बू द्वीप में है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमन समुद्र, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। कितनी योजन की? 500 योजन, 500 योजन प्रमाण बड़ा। एक राघव मत्स्य रहता है, उसका नाम राघव मत्स्य, और राघव मत्स्य के आंख में या कान में जो मल रहता है उसको खाने वाला एक तंदुल मत्स्य भी होता है। तंदुल लेने तांदुल, चावल के समान छोटा, तंदुल कहते हैं संस्कृत में, और तांदुल कहते हैं मराठी में तांदुल, लेकिन कन्नड़ में अक्की बोलते हैं, पूरा अक्की। ये दो मत्स्य कहां रहते? स्वयंभू रमन समुद्र में। इन दोनों को वज्र ऋषभ नारा सवनन होता है, पहला सवनन। और राघव मत्स्य का पेट इतना बड़ा रहता है, भूख लगी तो उसको करोड़ों मछलियां चाहिए। मछली मछली को खाती, जो छोटी छोटी मछलियां रहती है उसका वो आहार है। तो राघव मत्स्य को भूख जब लगती है तब वह मुंह फाड़ता है, और जहां मछलियां ज्यादा रहती है ना वहां घूमने लगता है, ऐसा ऐसा। तो अपने आप वो सभी अंदर आ जाती है और वो पेट भर लेता है। पेट भरने के बाद नींद आती है, सो जाता है, तंदुल मत्स्य उसके आंख में या कान में रहता है। तंदुल मत्स्य आंख कान में बैठा रहता है, वो देखता रहता है ये क्या कर रहा है। इतनी सारी मछलियां आई है, जा रही है जा रही है, और ये नींद में सो रही है ये मछली। अगर इस जगह मैं होती तो सारे मछलियों को निगल लेती, बंद कर देता मुंह, ये मुंह बंद ही नहीं करता, सो जाता है। इतना ही विचार करता है, हिंसा हुई क्या नहीं, पाप लगा क्या नहीं, कितना पाप लगा, सातवीं नरक जाने के लायक टिकट कट गया। रागो मत्स्य ने मछलियों को खा करके पाप किया, पहला भाव किया फिर खाया भी, दोनों कार्य किया, जीव भी मरे और जीवों को मारने का भाव भी किया। लेकिन तंदुल मत्स्य ने एक भी मछली को नहीं खाया, केवल भाव किया और भाव करके कर्मों को बांधा। कर्मों को बांधा, कैसे कर्मों को बांधा, इतना पाप को बांधा कि सातवां नरक का बंद हो गया तंदुल मत्स्य को। देखो वो छोटा है बड़ा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वज्रषभ नारद सनन बड़े को ही मिलता है। शरीर से कितना भी छोटा भी हो सकता है जीव, बड़ा भी हो सकता है। सौनन हड्डियां सब वज्र के समान कठोर हो सकती है छोटे जीव में भी। तो दोनों वो मछली, एक मछली द्रव्य पाप और भाव पाप दोनों करके सातवां नरक गया, और तंदुल मत्स्य केवल भाव पाप करके सातवें नरक गया। भाव पाप ऐसा होता है, ये किससे होता है, भाव पाप मन से होता है। मन क्या है, चंचल कुत्ता है, साथ रहता है। ये कुत्ता बहुत गड़बड़ करता है, अपने को काट खाएगा तो जहर चढ़ेगा, इसलिए कहते हैं इस कुत्ते को ऐसा एक इंजेक्शन दो जो काटने पर भी जहर न चढ़े। ऐसे इंजेक्शन आए कि नहीं आए हैं, यहां पर भी इंजेक्शन है, धर्म क्षेत्र में भी इंजेक्शन आए हैं। इसको कौन सा इंजेक्शन देना, हाँ इसमें जिनवाणी के माध्यम से जो हम ज्ञानार्जन करते हैं, कैसे चलना कैसे नहीं चलना, कैसे सोचना कैसे नहीं सोचना, इसका विवेक ज्ञान जो प्राप्त होता है ना, ये जिनवाणी का ज्ञान। इस जिनवाणी के औषधि को खींचो इंजेक्शन में, इंजेक्शन में खींच लो और आत्मा को उसको लगा दो इंजेक्शन। जिनवाणी के ज्ञान का इंजेक्शन अगर आपने दिया है तो फिर ये नरक नहीं जाएगा,
मन ढीला हो जाएगा।
भावों से हिंसा संबंधी विचार भी करेगा तो भी नरक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि विचार दया की दृष्टि से करेगा हिंसा का, हिंसा के क्रियाकलापों को देखकर खुद हिंसक नहीं बनेगा, अहिंसा के दृष्टिकोण से उन हिंसा के कार्यों के संबंध में विचार करेगा। जैसे पाकिस्तान भारत युद्ध हो रहा है और युद्ध में लाखों लोग मर रहे हैं, मान के चले कि लाखों लोग मर रहे हैं, भारत में पेपरों में आता है, सुबह उठते ही पेपर हाथ में लेते लोग, कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन पाकिस्तानी 10,000 लोग मर गए, मारा किसने, बॉर्डर पर सैनिकों ने मारा, मारने वालों को भी पाप लगना चाहिए, पेपर पढ़ने वालों को क्यों लगे। मारने वालों को लगना चाहिए, जिसको जिसको गोली लगी, जिसने गोली छोड़ दी, गोली मारा, उन्हीं को पाप लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, गोली मारने वाला पाप बंद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, किंतु यहाँ पेपर बटने वाला
कर रहा है,
पाप कर सकता है, पाप कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो पाकिस्तान के लोग कितने मर गए, तो कहें 10,000, बहुत अच्छा हो गया, चलो भारत जीत गया, आनंद माना कि नहीं? आनंद माना। 10,000 लोगों को मारने का पाप आपको आ गया, आप तंदुल मत्स्य बन गए और वो राघव मत्स्य बन गए, और दोनों कहां जाएंगे? एक ही स्थान पर। वो जहां जा रहा है वहीं आप भी जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो युद्ध होता है उस युद्ध में बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग मरते हैं। एक धर्म के लिए लड़ता है और एक अधर्म के लिए लड़ता है, एक स्वार्थ के लिए लड़ता है, एक निस्वार्थ लड़ता है। पाप किसको लगेगा? राम लक्ष्मण ने भी युद्ध किया और रावण ने भी किया। राम के द्वारा भी सेना मरी होगी, मर तो गई थी, और रावण के द्वारा भी तो राम की सेना मर गई होगी, मरी थी। रावण कहां गया? नरक गया। राम कहां गए? स्वर्ग गए, मोक्ष गए, मोक्ष गए, मोक्ष। लक्ष्मण कहां गए? नरक गए। लक्ष्मण जरा गड़बड़ था। न्याय के पक्ष में लड़ता हुआ भी नरक गया। न्याय के पक्ष में लड़ रहा है फिर भी नरक गया। और रावण अन्याय के पक्ष में लड़ रहा है, वो नरक जग गया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अन्याय के पक्ष में लड़ने वाले बहुत पाप कर्म का बंद करते हैं, न्याय के पक्ष में लड़ने वाले पाप कर्म का बंद तो करते हैं, लेकिन भावों पर आधारित है। लक्ष्मण के परिणाम जो रहते थे, इतने तीव्र गुस्सा आ गया तो राम को संभालना पड़ता था उनके गुस्से को, और राम को एक बार भी गुस्सा नहीं आया, युद्ध करते हुए भी गुस्सा नहीं आता था, किसी को मार रहा है तो भी गुस्सा नहीं, तो नरकायु का बंद हो ही कैसे सकता है? जो कषायों को हमेशा मंद रखते हैं उनको नरकायु का बंद होता नहीं, कषायों को तीव्र रखते हैं तो नरकायु का बंद हो सकता है। तो तीव्र कषाय, देखो लक्ष्मण के देखो कैसे परिणाम होते थे। हम ये नहीं कह सकते कि न्याय के पक्ष में लड़ा और सेना में कई लोगों को उनने मार दिया, उसके पाप के कारण से वो नरक गया, ऐसा नहीं कह सकते। परिणाम उनके स्वभावतः ऐसे तीव्र थे, न्याय अन्याय को विचार करने की विवेक बुद्धि को खो जाते थे वो। राघव मत्स्य एक मिनट के लिए सोच गया और उस समय नरकायु का बंद किया और सातवें नरक चला गया। केवल भाव पाप करता है। लक्ष्मण विवेकहीन हो जाते थे। राम सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लक्ष्मण भी सम्यक दृष्टि, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि थे, रावण भी सम्यक दृष्टि, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि था रावण। जब तक ये सम्यक दृष्टि रहे नरकायु का बंद नहीं हुआ, सम्यक दृष्टियों को नरकायु का बंद नहीं होता, ये सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि मनुष्य लड़ सकता है, लाखों लोगों को मार सकता है, लेकिन न्याय के पक्ष में लड़ रहा हो और कषायों को अत्यंत मंद रख रहा हो तो नरक नहीं जाएगा, वो मोक्ष भी जा सकता है। भावों का खेल है जैन धर्म। जैन धर्म मतलब जीतने वालों का धर्म। क्या जीतना? अपने परिणामों को जीतना, अपने कषायों को जीतना, जीतने वालों का धर्म जैन धर्म। अपने भावों को कैसे रखना चाहिए इससे सीख लेना चाहिए। न्याय के पक्ष में हमेशा विचार करना चाहिए। अन्याय के पक्ष में विचार करते हैं और मंद कषाई भी हैं तो पाप कर्म का बंद होता ही है। न्याय के पक्ष में है और तीव्र कषाई है तो पाप कर्म का बंद होता है, और मंद कषाई है तो बिल्कुल पाप कर्म का बंद नहीं होगा। भावों का खेल है। अपने भावों को कैसे रखना? मंद रखना। और किस पक्ष में रहना? न्याय के पक्ष में सदा रहना। अन्याय का समर्थन भी नहीं करना और अन्याय भी नहीं करना। अन्याय भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना। तो ये है आत्मकल्याण का रास्ता। अपने जीवन का सुधार अपने भावों से, अपनी प्रवृत्ति से होता है। सवनन की बात हो गई, त्रिरंच की अपेक्षा से बात हो रही थी। सौदनी पंचेंद्री त्रिरंच नरक में कहां तक जा सकता है? तो सातवें नरक तक जा सकता है। स्वर्ग में कहां तक जा सकता है? तो अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ये बात अपने को समझ में आ गई। छह सनन की अपेक्षा से बात समझ में आ गई। पहला सवनन, दूसरा सवनन, तीसरा सवनन और चौथा सवनन, ये सवनन यदि हो त्रिरंच को, सौदनी पंचेंद्री हो, तो भवनत्रिक से लेकर 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकता है। अधिक से अधिक 16वें तक जाता है। टाइम हो गया है जिनवानी।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जोशी चलवानी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जय वंदो मां जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरोमा, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।